हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा, समाजशास्त्र विभाग, जेकेपी पीजी कॉलेज, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है अधीनस्थ परिपेक्ष के व्यवहारिक पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखते हैं, शाब्दिक रूप में देखते हैं, तो अधीनस्थ अंग्रेजी भाषा के शब्द सबाल्टर्न शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मार्क्सवादी विद्वान एंटोनियो ग्राम्सी ने समाज के दबे कुचले और शक्ति विहीन वर्गों के लिए किया था। भारत में अधीनस्थ विचारधारा की सबसे पहली बार समग्र और संगठित रूप में रंजीत गुहा ने रखा। रंजीत गुहा व्यवसाय से इतिहासकार हैं। उन्होंने लंदन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है। इस परिप्रेक्ष्य में उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अधीनस्थ विचारधारा सिद्धांत और अवधारणा को 1982 ईस्वी से लेकर 2005 ईस्वी के बीच सबाल्टर्न स्टडीज शीर्षक के अंतर्गत 12 भागों की एक बहुत बड़ी पुस्तक माला संपादित की, प्रकाशित की। इस पुस्तक माला में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य पर समुचित प्रकाश डाला गया है और इसे भारतीय परिवेश में परिभाषित करते हुए उन्होंने इसकी सामाजिक उपयोगिता को भी प्रस्तुत किया है। डेविड हार्डी मैन भी इस पुस्तक माला के लेखकों में सम्मिलित है। इस पुस्तक माला की जो पहली पुस्तक है उसमें रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न यानी अधीनस्थ परिपेक्ष की अवधारणा की रूपरेखा को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया है। फर्स्ट, पेशेवर और तथाकथित इतिहासकार अभिजन इतिहासकार है, यानी वो एक वर्ग के लोगों का ही अध्ययन करते हैं, एक वर्ग विशेष के बारे में ही वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। और ये जो वर्ग विशेष है वो अभिजन यानी उच्च वर्ग और इलीट वर्ग है। उनके विषय राजा महाराजा ठाकुर और जमींदार और जागीरदार रहे हैं। इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ जान जोखिम में डालकर जंगलों पहाड़ों में खतरों को चुनौती देते रहे। ये इतिहासकार इस मामले पर बिल्कुल चुप रहते हैं कि प्रस्ताव के साथ लड़ाई लड़ने वाले यानी महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ने वाले भील आदिवासियों पर क्या गुजरी, उन्होंने किस तरह जंगल की त्रासदीपूर्ण जीवन को झेला। इसी प्रकार ये इतिहासकार लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण जीवन की तस्वीर को तो प्रस्तुत करते हैं पर उनके अगणित योद्धाओं के बारे में आंखें मूंद लेते हैं। उनकी भी माँ बेटियाँ होंगी, उनकी भी पत्नियाँ होंगी, पर राजा महाराजाओं के इन इतिहासकारों को यह सब दिखाई नहीं देता। वास्तव में ये अधीनस्थ तो उन अभिजन इतिहासकारों के लिए गुमनाम है और इन्हें ये गुमनाम ही बनाए रखना चाहते हैं। रंजीत गुहा के अनुसार समता, समानता और स्वतंत्रता के इस वर्तमान युग में ऐसा इतिहास और ऐसे आधे अधूरे अध्ययन स्वीकार नहीं है जो कि जमीन से जुड़ी सच्चाई को की विवेचना न करते हो। सेकंड, राष्ट्रीय इतिहासकार मुख्यतः आंदोलनों पर ही अपने आप को केंद्रित करते हैं। वे प्राय देशव्यापी घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। आम आदमी और धरती से जुड़े हुए समुदाय की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति से उनका कोई मतलब नहीं रहता। उनके इतिहास का संदर्भ अभिजन को देखना होता है, अभिजन के विषय में ही अध्ययन करना होता है। थर्ड, अधीनस्थ अध्ययन का केंद्रीय विषय इतिहास एवं अन्य विषयों में पद दलित एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अपने विषय क्षेत्र में सम्मिलित करना है। ये गरीब गुरबे लोग ही ऐसे नवीन अध्ययनों का संदर्श है और इन्हें लेकर किया जाने वाला अध्ययन दृष्टिकोण ही अधीनस्थ परिपेक्ष का निर्माण करता है। यदि अभिजन की राजनीति होती है तब आदिवासियों, किसानों और उपेक्षित समूहों की भी कोई ना कोई राजनीति अवश्य होती है। यदि अभिजन का समाज है तो दलितों, पिछड़े हुए वर्ग के समाज को भी हम नहीं नकार सकते। सच को सामने लाने के लिए दलितों और नीचे के पायदानों पर खड़े लोगों से अध्ययन का प्रारंभ करना ही उचित है। फिफ्थ, यदि देश के इतिहास को राजा, महाराजा और नेताओं ने बनाया है तब जन सामान्य ने भी इस इतिहास को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ऐसा क्यों है कि इन हाशियों के लोगों को कोई मान्यता नहीं दी गई, उनकी कोई पहचान नहीं की गई? वर्तमान युग इन सभी को पहचान प्रदान करने का समाज है। सिक्स, वास्तव में अधीनस्थ अध्ययन उन कमजोर वर्गों की व्याख्या करता है जो अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं और अभिजात वर्ग पर निर्भर नहीं है। समाज का की संरचना या ढांचा इन्हीं नींव के पत्थरों पर टिका है और इन्हें जाने बिना कोई बौद्धिक इमारत मजबूत नहीं हो सकती। अधीनस्थ अध्ययन दलितों की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करने में मार्क्स के सिद्धांतीकरण का प्रयोग तो करता है किंतु पूर्णतः मार्क्स की द्वंद्वात्मकता पर ही निर्भर नहीं है। इसके अपने सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जिन्हें अध्ययन के साथ साथ विकसित किया जाना आवश्यक है। एर्थ, अधीनस्थ अध्ययन आम जनता के जीवन का अध्ययन है। ये उस जनता के जीवन का विश्लेषण है जो सड़कों पर घूमती है, जीवन की जद्दोजहद के अनुभव घरों की छतों के नीचे या छत विहीन आसमान के नीचे अपनी रातें गुजार कर प्राप्त करती है और अपने खून पसीने से अपनी तकदीर को लिखती है। नाइन्थ, समाज को जब हम किसी ब्रुजवा या अभिजन परिपेक्ष के संदर्भ में देखते हैं तो समाज हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है, खुशहाल और आनंदमय लगता है। इस तरह का सदर्श सातवीं मंजिल से नीचे झांकना है। इसके विपरीत अधीनस्थ परिपेक्ष जमीन पर उतरकर अपने चारों ओर देखना है। इस संदर्भ में जो हमारा दृष्टिकोण है, जो परिपेक्ष है, वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ से मेहनत कसो के शरीर पर छलकते पसीने की बूंदे पसीने की गंध के साथ हमारी संवेदनाओं को झकझोरती है। कूड़े करकट के ढेर पर कुत्तों के साथ रोटी के टुकड़ों की लड़ाई के दृश्य हमारे ज्ञान को और विस्तार देते हैं और हम ऊंची अटालिकाओं के साथ साथ झोपड़पट्टी तथा सड़क के छोर पर रहने वाले लोगों को भी समाज के अभिन्न अंग के रूप में देखकर पहली बार समाज की संपूर्णता को समझने लायक हो जाते हैं। तो ये रंजीत गुहा ने अधीनस्थ परिपेक्ष के व्यवहारिक पहलू बताए हैं कि हमें अधीनस्थ परिपेक्ष को अपने अध्ययन की विषय वस्तु क्यों बनाना चाहिए। धन्यवाद।